खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार पर लिखी गई खुदावन यीशु मसीह की अंजील उसका 8 बाब। हम 3 बातों पर गौर कर रहे हैं पिछले 6-7 महीनों से, और वो है देखना, सीखना और अमल करना। ये 3 बातें बहुत ही अहम हैं, चाहे हमारे घर से शुरू करें, चाहे किसी स्कूल से शुरू करें, चाहे किसी वर्कशॉप से शुरू करें, यानी कि जिंदगी के किसी भी कारोबार में, काम में, हुनर में, ये 3 बातें बहुत अहम हैं। देखना, सुनना और उस पर क्या करना जी, अमल करना। अगर हमें मुश्किल है देखने में, तो फिर हम को मुश्किल होगी समझने में। अगर हमें मुश्किल है समझने में, तो हमें मुश्किल होगी उसे कबूल करने में, और उसका नतीजा क्या निकलेगा? जब कबूल करने में मुश्किल होगी, तो हम उस पर अमल नहीं करेंगे। इसलिए आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से फिर लूका तबीब की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी को कि किस तरह वो बयान कर रहा है। कल हम सीख रहे थे कि चिराग जलाकर पैमाने के नीचे रखा नहीं जाता, बल्कि उसे ऊंची जगह पर रखा, ताकि घर में आने वालों को क्या मिले जी, रोशनी मिले। और हम सबको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो। सो आए हम अगले हिस्से में देखें यीशु मसीह की माँ और उसके भाई के वहां पर क्या हुआ। सो लूका की इंजील उसका 8 बाप और उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत तक का ये वाक्या पढ़ेंगे कि क्या हुआ। फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच ना सके, और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा, मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की क्या हो जी, बरकत। तो 3 बातें हम देख रहे हैं, देखना सीखना और अमल करना। तो यहां पर हम देखेंगे कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने ये जवाब अपनी माँ और भाई को दिया, क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने अवाम के साथ मुखातब होते हुए ये जुमला कहा। क्या ये बात ऐसी है कि खुदावंद यीशु मसीह को कोई फिक्र नहीं? क्या इसके पीछे वजह है, क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने सोचा नहीं कि उसकी माँ उसके भाई उसको मिलने को आए हैं? क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर थोड़ा सा भी इजहार नहीं किया, उनको बिठाओ? सवाल उठता ना जी, क्यों? जैसे बहुत दफा काना गलील की शादी में सवाल उठाया जाता है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने, जब तमाम मेहमान वहां पर मौजूद हैं, जरूरत बहुत बड़ी है, शादी का माहौल जारी है, और क्या हुआ कि उनके पास जो जरूरी हिस्सा है शादी का यहूदियों में, वो क्या है जी, मैं खत्म हो गई, जो बड़ी ही क्या कह सकते हैं कि जिल्लत की बात हो सकती है। और खुदावंद यीशु मसीह की माँ वहां पर भी कहती है कि इनके लिए ये कर। और खुदावंद यीशु मसीह ऐसे नजर आते हैं, बगैर सोचे, बगैर फिक्र, बगैर किसी चीज को मुतवज्जा रखते हुए फट से कहते हैं, ऐ औरत तुझसे मुझसे क्या काम। महसूस होता ना कि क्यों यीशु मसीह ऐसा रवैया, क्यों यीशु मसीह ऐसे जुमले इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है, क्यों उसने फट से कह दिया कि तुझे मुझसे क्या काम। और बहुत दफा हम देखते हैं कि वो यीशु ने कह दिया, ऐ औरत, सो जब बाइबल मुकद्दस में हम ऐसे वाक्यात को पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर एक और वाक्या उस कनानी औरत को जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे गैर कौम है, दुरहा रही है, पुकार रही है, मिन्नते कर रही है और दरखास्त कर रही है कि मेरी बेटी में बदरू है, उसके लिए तू कुछ कर। और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर भी ऐसा ही रवैया दिखाते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना मुनासिब बात या मुमकिन नहीं। दूसरे लफ्जों में वहां पर भी ऐसा ही नजर आता है, क्या यीशु मसीह को कोई फिक्र नहीं? क्या यीशु मसीह इस बात के लिए अपने दिल में कोई तर्स नहीं रखता? क्यों वो उस जरूरतमंद की बेटी की दुआ के लिए वो कहती है मेरे ऊपर रहम कर, मेरी बेटी के ऊपर रहम कर, और यीशु वाज़ह तौर पर कह देता है कि मैं इसराइल के घराने के अलावा किसी और के पास भेजा नहीं गया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। ऐ औरत तुझे मुझसे क्या काम, यीशु तेरी मां तेरा भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। और वो सारे लोगों को देखकर कहता है मेरी मां और मेरे भाई तो ये हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते। सवाल उठते हैं, तो आज इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं कि क्यों बहुत दफा हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ का जवाब ठीक उस औरत की तरह होता है जो पीछे चला रही है कि इब्ने दाऊद खुदावंद खुदा मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी जो बदरू गिरता है, मेरा बेटा जो बीमार है इस पर रहम कर, और जवाब क्या मिलता है? नहीं। और जब यीशु ने उससे कहा तो उस औरत का जवाब क्या था? उसने ये नहीं कहा कि ठीक है मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। उसने कहा कि ऐ खुदावंद कुत्ते भी मालक की मेज से गिरे हुए टुकड़ों में से खाते हैं। ये उसका ईमान और अटल ईमान है, ऐसा ईमान जिसकी तारीफ खुदावंद यीशु मसीह ने की और कहा कि ऐसा ईमान मैंने इसराइल में भी नहीं पाया। और आगे चलकर काना गलील की शादी में देखते हैं यीशु मसीह ने क्यों कहा कि ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिस्म में खुदा है, वहां पर उसने अपनी मां की बेइज्जती नहीं बल्कि उसे याद दिलाया कि वो कौन है। ठीक उसी तरह जब वो फिक्र में थे, परेशानी में थे कि हम तुझे 3 दिन से ढूंढ रहे हैं और तेरी तलाश में है, जब वो 12 साल का था हैकल में रह गया और पीछे वो बैठा क्या कर रहा है, रबियों के साथ बयानबाजी कर रहा है, उनको कलाम की वो बातें जिसने खुद कलाम लिखा है उनके दरमियान बैठा उनको सिखा रहा है और वो सब हैरान है। और यूसुफ और मरियम क्या है, अपने तमाम बाकी रिश्तेदारों के साथ परेशान है। और यीशु का जवाब वहां पर क्या है, क्या तुझे नहीं पता कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है? जरूर है। काना गलील की शादी में भी खुदावंद खुदा अपनी मर्जी को पूरा करने वाला है और जो औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ बेइज्जती का नहीं बल्कि वो एक ऐसा जुमला यहूदी आज भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें क्या है जी, शनाख्त कराई गई है कि तू कौन है। पहली इसमें जो शनाख्त करवाई गई वो ये थी कि वो क्या है, एक शादीशुदा क्या है जी, औरत है, और बेटा होते हुए यहूदियों के लिए जो आज भी औरतों का निजाम है वो मजलस में नहीं बोलती, और यीशु मसीह कलाम जो खुद है वो क्या करता है, मरियम को याद दिलाता है कि यहाँ पर मैं खुद खुदा मौजूद हूँ, मुझे सब पता है, मुझे तेरी सिफारिश की जरूरत नहीं। और यहाँ पर دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح اس کی ماں اور بھائی اس کے پاس آئے ہیں, بھیڑ کے سبب سے وہ یسوع کے پاس نہیں پہنچ پائے, تو سب لوگوں نے جو وہاں پر تھے, لازمی ہے کہ مریم اور اس کے بھائیوں نے کیا کیا ہوگا, یسوع کے بھائیوں نے کیا کیا ہوگا, اپنا وہ کارڈ نکال کر دکھایا ہوگا شناخت کا, او بھائی آپ سن رہے ہیں اس کو, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بیٹا ہے, اسے میں نے جنم دیا ہے. اور لوگ حیران ہو گئے ہوں گے, لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہاں ہاں جلدی جلدی خداوند کی ماں کو لے کر اس کے پاس جائیں, عزت کے طور پر, احترام کے طور پر, ہر لحاظ سے. جیسے آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے, آپ کسی افسر یا کسی عہدے پر ہوں, تو آپ کا کوئی رشتہ دار آئے تو کیا کہتے ہیں, جی جا کر افسر کو بتاؤ جی کہ آپ کا بھائی, آپ کا رشتہ دار آیا ہے, آپ کا چاچے کا بیٹا آیا ہے, تو وہ بھاگ کر کیا کرتے ہیں, جاتے ہیں. تو ٹھیک یہاں پر بھی ویسے ہی ہوا, کیا لکھا ہے, پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس گئے مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک نہ پہنچ سکے, اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی شناخت کرائی ہے کہ ہم کون ہیں, لیکن جواب بڑا عجیب سا نظر آتا ہے کہ کیوں خدا یسوع نے یہ کہا. اس نے جواب میں کہا, میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. ذرا اس پر سوچیں, جواب میں بھی دوں گا, جواب آپ کو بھی پتا ہے, لیکن سوچیں کیوں خداوند یسوع مسیح ایسے جملے استعمال کرتا ہے جو بہت دفعہ ایسے نظر آتے ہیں جو کہ پرائے پرائے. خداوند یسوع مسیح کا آپ کو وہ کلام یاد ہوگا کہ کسی نے کہا کہ خداوند خدا اس سے پہلے میں تیرے پیچھے آؤں مجھے اپنے باپ کو دفن کرنے دے, اس نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے, تو میرے پیچھے چل. پطرس نے کہا کہ ہم نے تو تیرے لیے اپنے ماں باپ, بہن بھائی, اپنی بیوی, بچے, جائیداد سب کچھ چھوڑ دیا ہے, ہمیں کیا ملے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی اپنی خودی کا انکار کرے اور میرے پیچھے ہو لے اور اپنی صلیب اٹھائے تو وہ میرا کیا ہے جی, شاگرد کہلائے گا. کتنی کٹھن بات ہے. پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے دشمن تمہارے گھر ہی کے لوگ ہوں گے. اگر تو اپنی ماں سے, اپنے بھائی سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے یا کسی اور چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے میری نسبت, تو میرا شاگرد بننے کے لائق نہیں ہے. کیسا کڑوا کلام ہے کہ ماں کو چھوڑنا ہوگا, بیوی کو چھوڑنا ہوگا, بچوں کو چھوڑنا ہوگا, بہن بھائی کو چھوڑنا ہوگا, سب کو چھوڑنا ہوگا, تب میں شاگرد بنوں گا. ان سارے کڑوے جملوں کے پیچھے جو حق اور سچ وہ یہ ہے, یسوع مسیح جو ہم سے چاہتا ہے وہ سب سے اول درجہ یہ ہے کہ اسے دیا جائے ہر ایک زمینی رشتے سے, ہر ایک زمینی بات سے, ہر ایک دنیا کی شان و شوکت سے. سب سے اعلیٰ درجہ خداوند یسوع مسیح کا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے ملے. ہمارے گھر کے لوگ کیوں ہمارے مخالف ہوں گے؟ جب ہم گھر کو پہلے نہیں بلکہ خدا کو پہلے رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا, بیوی مخالفت کرے گی اگر بیوی ایمان میں مضبوط نہیں ہے, ماں مخالفت کرے گی اگر ایمان میں وہ ماں مضبوط نہیں ہے, باپ مخالفت کرے گا اگر باپ اس ایمان میں کیا ہے جی, مضبوط نہیں ہے, اور بھائی تو مخالفت کریں گے. اسی لیے اس نے کہا کہ وہ تمہارے گھر کے لوگ ہی تمہارے دشمن ہوں گے. تو یہاں پر جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے, کیا ہے اس کڑوے کلام کا جواب؟ خداوند یسوع مسیح ان کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جو اس کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں, وہی اس کے ماں اور بھائی ہیں. यहाँ पर यीशु मसीह अपने खूनी रिश्ते का इनकार नहीं कर रहा। यहाँ पर जो मेन फोकस जिसे कह सकते हैं तवज्जो जहाँ जोर दिया जा रहा है वो क्या है, मेरे बाप और मेरे माँ और मेरे बहन भाई कौन है, वो हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं। क्योंकि जैसे जमीन पर खानदान है वैसे आसमानी खानदान है। आसमानी हमारा बाप है, खुदावंद यीशु मसीह हमारा मसीह क्या है, भाई है, खुदावंद है, वो पलोठा है। वो चाहता है कि हम हर एक चीज से ज्यादा अहमियत किस बात को दें, खुदावंद यीशु मसीह को। और खुदावंद यीशु मसीह को जब अहमियत देंगे उसके कलाम को अहमियत देंगे, जब उसके कलाम को अहमियत देंगे तो फिर हम उस पर अमल करेंगे, वरना हम ना ही मोहब्बत करेंगे, ना ही अमल करेंगे और ना ही हम कोई फिक्र करेंगे, फिर हम दिखावा करेंगे। तो यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जानता है, पहचानता है, समझता है। उसने ये नहीं चाहा कि सिर्फ मेरे रिश्तेदार, सिर्फ मेरे रिश्ते ही की वजह से इज्जत और आला मर्तबा पाएं, बल्कि वो चाहता है कि हर एक को एक जैसा क्या मिले जी, दर्जा मिले। और इसीलिए उसने कहा मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। क्या आज खुदावंद के कब के सामने वो हमारे बारे में ऐसा कहेगा? हमारे बारे में ऐसा तो नहीं कहेगा कि मैं तुझे जानता नहीं। हमारे बारे में ऐसा तो नहीं कहेगा मेरे भाई और मेरी माँ तो ये हैं जो कलाम सुन रहे हैं। जब यासर यीशु को रूबरू देखने के लिए आसमान पर चले गया, तो जब यहां पर जमीन पर खाने की तैयारी कर रहे थे, अगले दिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हकीकी रिश्तेदार या भाई कौन है। उनमें से बहुत से यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बत, ताबेदारी, कुर्बानी और प्यार दिखाया। किस में? इसलिए नहीं कि कोई खूनी रिश्ता है। सबसे अहम रिश्ता क्या था? मसीह का रिश्ता। उन्होंने बदिलो जान काम किया, उन्होंने हर तरह से क्या किया, खुदावन के नाम को जला देने के लिए मसीही का हक अदा किया। मैं नहीं चाहता कि हम खूनी रिश्तों का इनकार करें, बल्कि खूनी रिश्तों को मसीह का इकरार और मसीह का प्यार बताएं, ताकि हम सब ये कहने वाले बने। क्योंकि पता नहीं कि कितने महीने हो चुके हैं, कितने महीनों बाद उसकी माँ और भाई उसे मिलने के लिए आए हैं, और यीशु मसीह जिनमें रह रहा था, जिनमें तबलीग कर रहा था, जिनको सिखा रहा था, जिनके साथ वो बैठता था, खाता था, पीता था, जिनके दुखों से वाकिफ था, जिनकी मुसीबतों से वाकिफ था, जिनके उसने बहुत से बीमार ठीक किए, उन सब को उसने क्यों कह दिया कि यही मेरी माँ और मेरे भाई हैं? क्योंकि वो उसके कलाम को सुनकर उसके साथ एक हो गए थे। और हम भी किस तरह मसीह का खानदान बन जाते हैं, जब खुदावन यीशु पर ईमान लाते हैं तो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह हमको क्या बना देता है? एक खानदान बना देता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें खानदान के बारे में बड़ी जबरदस्त तालीम देती है। हमें मसीही खानदान बनने के लिए तीन बातों को बहुत ही जरूरी मद्देनजर रखना है। पहली बात, देखना। हमने देख लिया यीशु मसीह ने क्या किया। ये हवाला अगर किसी को और को दिया जाता तो उसने, हो सकता है इसकी तफसीर बिल्कुल ऐसे करनी थी जैसे उसको समझती। वो औरत वाला हवाला दिया जाता तो बिल्कुल उसकी तफसीर उसने अपने मियार के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक करनी थी। आपने हो सकता है इस हवाले को पढ़ा हो और आपने अपनी सोच और फहम और अदराक के मुताबिक इसका क्या कर रहा हो, अतलाक किया।
So, तीन बातें, यीशु को देखना, यीशु को सीखना और यीशु की जिंदगी पर अमल करना, ये तीन बहुत ही जबरदस्त क्या है जी, सतून है हमारी मसीही जिंदगी के खानदान में। तो आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा चैलेंज क्या है, आज हम सबको सबको जो हमसे मिले, देखें, सीखें और खुदा के कलाम पर अमल करें। और उसके लिए क्या करना होगा, खुदा के कलाम को अहमियत, खुदा के कलाम को अहमियत। अगर माफ करने की जरूरत पड़े तो खुदा का कलाम, अगर फैसला करना है कि कौन मेरा अजीज या हमदर्द है तो खुदा का कलाम आपको राहे चिराग बनकर सिखाएगा कि आपका हकीकी रिश्तेदार या मसीही बहन भाई कौन है, जो आपके दुख में, सुख में, मुसीबत में, नाकामयाबी में, कामयाबी में आपके साथ है। और बहुत से लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए हमें सीखना होगा। सो आए हम खुदा के सुन चुके हैं, आज का चैलेंज क्या है, चाहे किसी बहन या भाई ने रोजा रखा है तो जरूर खुदा के हजूर ये दुआ करें कि खुदावंद मैं यीशु को देखूं, उससे सीखूं और उस पर अमल करूं और वही सब कुछ दूसरों के साथ करूं जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे साथ किया। खुदावंद सब कुछ बड़ी बरकतें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद खुदा तेरे हजूर मिन्नत करता हूं कि आज का कलाम खुदावंद खुदा हम सब के लिए बाय से बरकत हो, कि हम जो भी खुदावंद वाक्य पढ़ें, चाहे वो खुदावंद खुदा अंधे बर्तलमाई का हो और चाहे वो जन्म के अंधे का हो, कि बर्तलमाई के पुकारने पर कह दिया कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, और जन्म के अंधे को जो इतने सालों से बैठा है उसके लिए देर क्यों लगाई। खुदावंद खुदा हम सबको इन छोटे छोटे वाकयात को जो तूने किए समझने की हिकमत और दनाई दे, कि एक को तू कहता है तेरे ईमान ने अच्छा किया और दूसरे को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, एक को कहता है कि तुझे मुझसे क्या काम और एक जगह कहता है सलीब पर कि ये तेरी माँ है और एक जगह कहता है कि मेरी माँ और मेरे भाई वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। खुदावंद तू भेतों से भरा हुआ खुदावंद है, अपने भेतों को समझने की हमें हिकमत और दनाई दे, ताकि खुदावंद आज का दिन हम सब पर भेत जाहर करने वाला दिन हो। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।